18वें अध्याय का दूसरा विभाग शुरू कर रहे हैं। जो पहला विभाग था पहले श्लोक से 12वें श्लोक तक, उसमें चर्चा की कैसे कि कर्म के त्याग से बेहतर है कि कर्म के फल का त्याग करें और कर्म को एक कर्तव्य के रूप में करें। तो अभी सवाल आता है कि कर्म अगर कोई करने वाला है तो क्या वो व्यक्ति बंधन में नहीं फंसेगा? कर्म करेगा तो बंधन में फंसेगा, तो कर्म करते हुए बंधन में क्यों नहीं फंसता है व्यक्ति अगर वो निष्काम होता है? तो उसका थोड़ा विश्लेषण भगवान अभी अगले विभाग में करते हैं। तो इसके लिए सांख्य भगवान उपयोग करते हैं समझाने के लिए। तो सांख्य के आधार पर वो समझाते हैं किस तरह से हम बद्ध नहीं होते हैं। हम चर्चा करते हैं 13वें श्लोक से। पञ्चैतानि महाबाहो कारणानि निबोधमे सांख्ये कृतान्ते प्रोक्तानि सिद्धये सर्वकर्मणाम्। तो पञ्चैतानि महाबाहो, हे महाबाहो, हे महाशक्तिशाली अर्जुन, पञ्चैतानि पंच पांच कार पांच विभाग है या पांच फैक्टर्स फैक्टर्स कॉजेस कारण है पांच विभाग बोल सकते हैं। विभाग भी सही नहीं मानते, पार्ट्स होता है विभाग पर, फैक्टर्स के लगभग उसके पास है। तो उसके पांच अंश है बोल सकते हैं। पंचैतानि महाबाहो कारणानि निबोधमे, संस्कृत में कारण शब्द है, उसका अर्थ हम देखा पहले अलग होता है, ऐसे नहीं कि इसलिए इसीलिए या इसके कारण होता है। सांख्य कृतांते प्रोक्तानि, तो सांख्य में इसका विश्लेषण होता है कृतांते प्रोकृत अंते, कृत कृति को हम करते हैं तो उसका अंत मतलब उसको समझने के लिए, उसको यश तक पहुंचने के लिए प्रोक्तानि ऐसे लोग कहते हैं। सिद्धये सर्वकर्मणाम, और ये पांच है सर्वकर्म में रहते हैं। तो अभी सांख्य क्या है? सांख्य ये षट दर्शनों में से एक दर्शन है, और इस दर्शन में अधिकांश रूप से इस भौतिक जगत का विश्लेषण होता है। तो ये सांख्य का उल्लेख कई बार आया भगवद गीता में, सबसे पहले आता है दूसरे अध्याय के 39वें श्लोक में, एषा ते भीता सांख्य बुद्धि योगे तो मांग, वहां पे सांख्य से शुरू होता है वर्णन। उसके बाद में उसका उल्लेख होते रहता है, और 13वें अध्याय के 6वें-7वें श्लोक में भी आता है कि कैसे इस भौतिक जगत में 24 तत्व है। फिर यहाँ पे बोल रहे हैं कि वही उस तरह से हम विश्लेषण करते हैं। सांख्य का विशेषता क्या है कि अलग अलग विभागों में विश्लेषण हो रहा है, विभाजन हो रहा है। तो इस तरह से जो विश्लेषण विभाजन हो रहा है उसका अर्थ क्या होता है कि हम विभाजन करके विश्लेषण करके ठीक और समझ सकते हैं। तो अभी एक तो है भौतिक अस्तित्व का हम विश्लेषण कर सकते हैं, विभाजन कर सकते हैं, उस तरह से हम भौतिक जो तत्व है और भी भौतिक हम कर्म कर रहे हैं कोई भी, उसका भी विश्लेषण कर सकते हैं। तो उसका विश्लेषण अगले श्लोक में करते हैं भगवान। तो हर एक कर्म में यह विभाग होता है, तो किस तरह से होता है वो बताएंगे अभी। अधिष्ठानम तथा कर्ता,
अधिष्ठानम तथा कर्ता,
कर्णम च पृथक विधा, विविधाश्च पृथक चेष्टा,
विविधाश्च पृथक चेष्टा,
दैवं चैवात्र पञ्चमं,
दैवं चैवात्र पञ्चमं।
तो यहाँ पे पांच चीजें, अधिष्ठानम, अधिष्ठानम मतलब जो परिस्थिति है, प्रभुपाद इसको भाषण करते हैं शरीर पर, क्या है आत्मा जिस भौतिक परिस्थिति में है उस पे वो निर्भर होता है यश कैसे आएगा। मैं इसको पहले ये सिर्फ संस्कृत में बताऊं, फिर इसको उदाहरण में लाऊं। कर्ता व्यक्ति जो कार्य कर रहा है, फिर उसके बाद में करणम, करणम मतलब उसके बाद जो अभी कर्ण है हमारे जो इंद्रिया है या जो सुविधा है कार्य करने के लिए, तथा पृथक विधम तो अलग अलग भाग कर्ण होते हैं, फिर विविधाश्च पृथक चेष्टा, और फिर वो प्रयास करता है, और अंत में दैवम चैवात्र पंचमम, और पंच आखिर जो है दैव है। तो अभी समझने के लिए सर उदाहरण से, अगर कोई क्रिकेट मैच चल रहा है तो क्रिकेट मैच में आप जानते हैं कि पिच बहुत महत्वपूर्ण होता है। कुछ पिच ऐसा होता है जो बॉलर्स के लिए बहुत अच्छा होता है, कुछ बैट्समैन के लिए अच्छा होता है, और कुछ ऐसा होता है कि वो शुरुआत में फास्ट बॉलर्स के लिए अच्छा होता है, बाद में स्पिन बॉलर्स के लिए अच्छा हो जाता है, बाद में बैट्समैन के लिए अच्छा होता है। तो क्या होता है जिस जगह पर वो खेलने वाले हैं मैच वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। अभी भारत का ऐसा है कि भारत इंडिया में शेर होता है, बाहर जाता है तो चूहा बन जाता है, तो सबसे हार जाता है भारत। तो क्या है वो अधिष्ठानम, जिस जगह पे कार्य हो रहा है वह बहुत महत्वपूर्ण है। तो हम जो आत्मा है वह शुद्ध है, भगवान का अंश है, आत्मा भी भगवान का अंश होने के कारण उसमें आत्मा भी शक्ति है, पर वही आत्मा जो आसमान में एक पंछी, जो पंछी के शरीर में होता है तो उड़ता है, जो अगर वो गरुड़ जैसे कोई ईगल्स घर है तो फिर क्या है, वो ऊंचाई तक जा सकता है, दूर तक सीख सकता है, चील चील और बहुत तेजी से उड़ सकता है। पर वही आत्मा अगर एक चींटी के शरीर में आता है तो धीरे धीरे चलना पड़ता है, इतना कि कोई पैर दिखाता है तो मृत्यु हो जाएगी। तो अधिष्ठानम, तो क्या कर पाएगा कोई भी, वह अधिष्ठानम शरीर पर निर्भर है। तो अगर कोई बहुत पहलवान व्यक्ति है तो बड़ा वजन उठा सकता है, पर कोई अगर कमजोर व्यक्ति उठा नहीं सकता है। तो आत्मा एक ही क्षमता का है दोनों इसमें, पर अधिष्ठानम और उसके बाद में कर्ता है। तो क्या है कि भले ही बहुत अच्छा क्रिकेट मैच चल रहा है, उसका बहुत अच्छा पिच भी है, पर अगर वो बैट्समैन है वो कैसे है, बल्लेबाज है, उसमें निर्भर है। अगर वो बहुत अच्छा बल्लेबाज है तो वो अच्छे से बैट मार सकता है, सिक्सर मार देगा। अगर कोई 11वां नंबर का बैट्समैन जिसको आता ही नहीं बैटिंग, सिर्फ बैट पकड़ के रखता है तो फिर क्या होता है, वो बैटिंग के लिए कितना भी अच्छा पिच होगा तो क्लीन बोल्ड हो जाए। तो क्या है, जो परिस्थिति है उस पर निर्भर है, उसके साथ साथ वो व्यक्ति है उस पर भी निर्भर है करता। फिर उसके बाद में करणम, करणम मतलब क्या, ये इंद्रिया है और इंद्रिया के साथ साथ उसका अर्थ ये भी है कि जो कार्य करने के लिए सुविधा है। तो अभी कोई क्रिकेट का उदाहरण लेते हैं, फिर और उदाहरण भी लूंगा बाद में। क्रिकेट में क्या है, अगर कोई व्यक्ति बड़ा ही शरीर से पूरा तंदुरुस्त होगा पर अगर वो बल्लेबाज है और उसके हाथ की छोटी सी उंगली फ्रैक्चर हो गई तो क्या होगा, बाकी शरीर तंदुरुस्त होने से कुछ फायदा नहीं है। कोई संगीत कोई गायक है, उसका पूरा शरीर तंदुरुस्त है पर उसका गला बैठ गया है, तो क्या है, अधिष्ठान मतलब पूरी परिस्थिति, पर करणम मतलब जो उस कार्य करने के लिए विशेष कारण लगता है वह भी महत्वपूर्ण है। कई बैट्समैन होते हैं कि उनकी खुद की फेवरेट बैट होती है कि वो बैट से अच्छा खेल सकते, वो बैट दूसरे कोई बैट होगी तो खेल नहीं पाते, और कभी कभी वो मैच के शुरुआत में एकदम हल्की बैट रखते हैं, फिर बाद में मैच खत्म होने लगता है तो फास्ट स्कोर करना होता है तो हैवी बैट लेके आता है कि मार सके। तो क्या होता है, करणम जो है उस पर भी निर्भर होता है। तो हमारा जो हमारी जो इंद्रिया है, अभी जो व्हाट इज बैट वटवागुल बैट नहीं, क्रिकेट के बैट नहीं, जो आप जो वटवागुल मराठी में बैठा था, तो जो अंधेरे में देख सकता है, तो उसके आंख वो ऐसा उल्टा लटके रहता है, गुफे में होता है, उल्लू इज आउट, ठीक है, उल्लू भी सही है, ठीक है। वो भी क्या है, उसके कारण ऐसे है कि आंखों वो अंधेरे में देख सकता है, हम साधारण अंधेरे में नहीं देख सकते हैं।
चिंगादड़,
तो
चिंगादड़,
चिंगादड़, ओके ठीक है। तो चिंगादड़ जो है वो क्या है तो उसकी जो कारण है वो ऐसे है कि वो व्यक्ति देख नहीं पाता है वो जो अंधेरे में देख सकता है, हम अंधेरे में देख सकते हैं। तो क्या है, हमारे इंद्रियों पे कर्म करना की क्षमता बड़ी निर्भर होती है। फिर उसके बाद में तो इंद्रिया क्या है, इंद्रियम च इंद्रिय पृथक विदम, क्योंकि करणम च पृथक विदम, क्योंकि अलग अलग प्रकार के कर्म के लिए अलग अलग प्रकार की इंद्रिया लगती है। तो अगर कोई गायक है, पहले उसका पैर फ्रैक्चर हो जाएगा तो उस गायक को कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि उसके लिए जो इंद्रिय लगती है वह पर्याप्त इंद्रिय वहां पर मौजूद है। और फिर उसके बाद में विविधाश्च पृथक चेष्टा, और अलग अलग प्रकार की चेष्टा करनी पड़ती है। चेष्टा मतलब प्रयास, कैसे कि किसी में क्षमता भी है, प्रतिभा भी है, टैलेंट है, पर उसके बावजूद होने के बाद भी उसमें उसको प्रैक्टिस करना पड़ता है। कोई बहुत अच्छा गायक भी हो फिर भी अगर उसको उत्कृष्ट गायक बनना है तो उसको प्रैक्टिस करना पड़ता है, तो वो चेष्टा है। चेष्टा नहीं करता है व्यक्ति तो क्षमता होगी तो भी वह फल में परिवर्तित नहीं होगा। तो कहते हैं कि परसिस्टेंस ब्रिजेस द गैप बिटवीन टैलेंट एंड अचीवमेंट। टैलेंट मतलब जो क्षमता है, अचीवमेंट मतलब जो करना है, करके दिखाता है, कोई प्राप्ति करता है, तो उसमें क्या है, परसिस्टेंस, करते रहना करते रहना। तो चेष्टा आवश्यक है। चेष्टा नहीं करता है व्यक्ति, तो फिर क्या होता है, वह व्यक्ति यशस्वी नहीं हो सकता है। वो यशस्वी होगा थोड़ा बहुत अपनी क्षमता के आधार पर अगर बहुत अच्छी तरह से यशस्वी बनना है और टॉप क्लास बनना है तो उसको चेष्टा करना बहुत जरूरी है। चेष्टा के बिना वास्तव में व्यक्ति यशस्वी नहीं होता है। तो हर एक कार्य में, कोई भी कार्य हो, अभी कोई संगीतकार होता है तो उसको घंटे घंटे घंटे, जो बहुत फेमस संगीत होता है, घंटे घंटे वो प्रैक्टिस करते हैं वास्तव में। तो वो उस तरह से कोई टेनिस प्लेयर होता है तो टेनिस प्लेयर क्या करते हैं, वो अपना गेंद को मार सके इसके लिए, वो एक टेनिस प्लेयर था कि वो 15 साल का होने के पहले उसने 1 करोड़ बार वो बॉल को मारा था। उसके पिताजी थे, उसको बोलते रोज आपको 1 लाख बार मारना चाहिए बॉल को, और उसका हाथ पूरा दर्द होता था उससे, पर वो उसका प्रैक्टिस था रोज, और लगभग उसको 6-7-8 घंटे प्रैक्टिस करना पड़ता था। तो चेष्टा है। तो क्या है, कोई भी कर्म है, हम देखते हैं अर्जुन भी महान भक्त थे भगवान के, पर क्या करते थे, चेष्टा, इतनी चेष्टा करते थे कि वो क्या अंधेरे में भी तीर बराबर निशाने पे लग रहा है कि नहीं वो देखते थे। तो क्या है, ये चेष्टा, हम सिर्फ भक्त है इसलिए हम चेष्टा नहीं करेगा, ऐसे नहीं होता है। एक बार प्रभुपाद जी को पूछा किसी ने कि प्रभुपाद जी, ब्रह्मानंद प्रभु बता दें कि हम कैसे समझे कि अभी अगर ने प्रवचन दिया है तो वो अच्छा प्रवचन था कि नहीं, तो मतलब अच्छी तरह से हमने वो सेवा की कि नहीं पर्याप्त पद्धति से। तो प्रभुपाद जी बोल रहे कि आपको प्रवचन के बाद लगना चाहिए कि मैंने और थोड़ा विचार किया तो ये पॉइंट के लिए उदाहरण दे सकता था, ये पॉइंट के लिए बोल सकता था, ये पॉइंट के लिए बोल सकता था। तो प्रवचन के बाद आपको हमें सोचना चाहिए कि मैं और क्या अच्छा कर सकता था। तो अगर वैसा आप सोच रहे हैं तो उसका मतलब है कि आपका वो प्रवचन अच्छा है, क्योंकि वो प्रवचन के लिए अच्छा नहीं होगा तो उस विचारधारा से आप और अच्छा प्रवचन दे पाएंगे। तो क्या है कि हमें जो चेष्टा बड़ी आवश्यक है, चेष्टा नहीं होगी तो फिर हम जो दक्ष है नहीं बन सकते, थोड़ा बहुत कार्य कर पाएंगे पर दक्ष नहीं बन जाएंगे। जैसे कहा जाता है सुभाष, नहीं सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगः, शेर है वो जंगल का राजा है पर वो जंगल का राजा कह के थाट में नहीं रह सकता है, तो वो राजा है इसलिए मैं जगह बैठे रहूं तुम मेरे मुंह में आ जाओ, नहीं होने वाला। ऐसे क्या है, व्यक्ति को चेष्टा करनी पड़ती है। हम कहते हैं प्रभुपाद जी इतने यशस्वी हुए प्रचार करने में पारे विश्व में, तो वह उसका राज क्या है। प्रभुपाद जी अलग अलग जगह पे बोलते थे कि क्या कि मैंने गुरु का आदेश था वैसे ही बिल्कुल पालन किया, या प्रभुपाद जी बहुत संवेदन बहुत बुद्धिमान थे अलग अलग से लोगों को प्रचार में सेवा में लगाने के लिए आकर्षित करने के लिए। प्रभुपाद जी अनेक गुण थे पर एक महत्वपूर्ण गुण था कि प्रभुपाद बहुत चेष्टा करते थे। देखते कि दिन भर प्रचार करते थे, रात को भी जल्दी उठ के ग्रंथों का वो संकलन करते थे। तो क्या है, दुनिया में अगर हम देखेंगे तो यशस्वी जो भी लोग हुए हैं उनमें उनके अलग अलग क्षमता अलग अलग गुण होते हैं, बट वन कॉमन डिनोमिनेटर इज हार्ड वर्क। कि ये सबको जो बहुत यशस्वी हुए मेहनत तो करनी ही पड़ती है, तो इसीलिए चेष्टा। और फिर चेष्टा करने के बाद भी यश मिलेगा इस आवश्यक नहीं है। क्या है उसके बाद में है, दैवम चैवात्र पंचमम, दैव जो है ये पंचम है। तो अभी महाभारत में वर्णन आता है कि जब युद्ध होने, अभी पांडवों और कौरवों में जो कौरवों के खास करके पांडवों के प्रति ईर्ष्या भावना है जो बढ़ रही होती है, कौरव जो षड्यंत्र कर रहे होते पांडवों के खिलाफ, तो तभी विदुर धृतराष्ट्र के पास जाते हैं, कहते हैं कि आप दुर्योधन को रोको, अभी अगर आप रोकोगे नहीं तो सारे आपके कुल का कुरु वंश का नाश निश्चित है। तभी धृतराष्ट्र कहते हैं कि अगर ये दैव की इच्छा है कि हमारा ना वंश का नाश हो जाए तो मैं तो छोटा सा मानव हूं, मैं क्या कर सकता हूं। तो तभी क्या कहते हैं विदुर कहते हैं कि दैव हमारे कर्मों के फल को निर्धारित करता है, दैव हमारे कर्मों को निर्धारित नहीं करता है। दैव क्या करता है, डेस्टिनी डिटरमाइंस द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ आवर एक्शंस, नॉट आवर एक्शंस देमसेल्व्स। कोई विद्यार्थी अगर कहता है कि मैं पढ़ाई नहीं करूंगा और फिर बाद में मार्क्स नहीं मिलते हैं तो वो किस्मत पे नहीं डाल सकता है, वो जो नियति है वह उसके अंक भले ही निर्धारित करती है, पर उसका कितना प्रयास, कितना पढ़ाई करना है, किस तरह से तैयारी करना है, वो निर्धारित नहीं करती, उसके हाथ में है। तो क्या है, दो प्रकार की विचारधारा है, एक है कर्मवाद और दूसरा है दैववाद। कर्मवाद मतलब सब कुछ मेरे ही हाथों में, मैं अगर मेहनत करूंगा तो मैं दुनिया का अगला सबसे बड़ा करोड़पति बन जाऊंगा। और दैववाद मतलब क्या, मेरी किस्मत ही फूटी है, मैं कुछ कर ही नहीं सकता। तो कर्मवाद और दैववाद दोनों प्रकार की धारणाएं हैं। और वैदिक शास्त्रों का क्या अर्थ है, क्या भाव है कि कर्म और दैव दोनों आवश्यक के फल की प्राप्ति के। क्या है कि इसके लिए उदाहरण क्या है, एक किसान का उदाहरण। किसान जो है उसको अपनी खेती करना यह कर्म है, पर खेती करने के बाद बारिश उचित मात्रा में उचित समय में आना यह दैव है। तो कर्म और दैव दोनों साथ में आते हैं, और उसके साथ साथ एक और कार्य आता है काल। ये वायु पुराण में वर्णन आता है तीनों विश्वास का, कर्म दैव और काल, जब तीनों आते हैं उचित पद्धति है तभी फल आता है। तो क्या है यहाँ पे भगवान, तो इस विश्लेषण में जो पहले चार जो है वो सब कर्मों में आते हैं, अधिष्ठान तथा कर्ता कर्ण विदाशेषम, ये सब कर्म का ही विभाग है। और जो पंचम दैवम चैवात्र पंचमम, तो कर्म और दैव दोनों साथ में होंगे फिर फल आता है। तो भगवान बताओ इसी को आगे वर्णन करेंगे भी। शरीरवान मनोभिर्य कर्म प्रारभते नरः न्यायं वा विपरीतं वा पञ्चैतस्य हेतवः। तो शरीरवान मनोभिर, शरीरवान मनो मतलब मन से, शरीर से और वाणी से अगर कोई कार्य करता है तो कर्म प्रारभते नरः, प्रारंभ करता है, करता है वो कार्य। तो और वो किस प्रकार कार्य है, न्यायम वा विपरीतम, न्याय मतलब अच्छा कार्य है या बुरा कार्य है। तो अच्छा हो या बुरा कार्य, सब कार्यों में यह पांच चीजें होती है। अगर कोई चोरी भी करना चाहता है तो उसके लिए भी सब महत्वपूर्ण है, परिस्थिति होनी चाहिए। अगर वो चोरी करना चाहता है, अगर वो ऐसी जगह जाएगा बहुत सिक्योरिटी है वहां पर, सारे अलार्म वगैरह बसर है, तो वहां पर कर नहीं सकता चोरी। तो अधिष्ठान तथा करता, कोई चोर होगा वो जो चोरी करने जाएगा तो इतना आवाज कर देगा तो पकड़ लेगा, तो उसकी कितनी दक्षता है, उसके लिए भी वो वास्तव में गलत कार्य है, पर उसके लिए भी क्या है ये पांच कार्य आते हैं। कभी चोरी करने का प्रयास करता है तो कोई आ जाता है वहां पर तो भाग जाता है, भाग जाना पड़ता है उसको, क्या है तो वहां पर दैव आता है, कभी यशस्वी होता है, यशस्वी नहीं होता है। तो न्यायम व विपरीतम व, इन सब में ये पांच विभाग आते ही है। पंचैते तस्य हेतवः, और फिर इसके बाद में अभी ये क्यों विश्लेषण कर रहे हैं भगवान, तो हम कर्म के बंधन में कब फंसते हैं, कब नहीं फंसते वो बता रहे हैं। तत्रैवं सति कर्तारम् आत्मानं केवलं तु यः, आत्मानं केवलं तु यः पश्यत्य कृतबुद्धित्वान्, न स पश्यति दुर्मतिः। तो तत्रैवं तो ऐसे ऐसे जब कर्म होता है, कर्म करता है आत्मानं केवलं तु यः, अगर सोचता है कि मैं ही करता हूं, अगर सोचता है आत्मानं केवलं तु यः, मैंने किया इसलिए फल मिल गया, तो फिर क्या है वह पश्यत्य अकृत बुद्धित्वान। तो वो उसकी जो पश्यत जो देख रहा है वो अकृत बुद्धित्वान, उसकी जो बुद्धि है वो विकसित नहीं है, उस पर देख नहीं पा रहा है, और फिर न स पश्यति दुर्मति, वो जो देख रहा है वो उसी तरह से नहीं देख रहा है। कई बार क्या होता है, कोई चैंपियन बैट्समैन भी होता है, वो आता है बैटिंग करने के लिए और वो क्लीन बोल्ड हो जाता है, तो ये कहेगा कि ये तो चैंपियन बैट्समैन, कुछ साधारण बॉलर से बोल्ड हो जाता है, कहते हैं कि ये आउट ऑफ, मैं वो कह लोग कहते हैं कि आज आउट ऑफ फॉर्म है। तो अभी कोई बैट्समैन चाहता तो नहीं कि मैं आउट ऑफ फॉर्म हूं, तो वो क्यों आउट ऑफ फॉर्म जाता है, क्या है वो उसके हाथ में नहीं है। क्या है खास करके मैं यहाँ पे खेलों का उदाहरण क्यों दे रहा हूँ कि उसमें हमारे साधारण जीवन में हम शायद देखते नहीं है कि खेलों में क्या होता है, फल मिलने पे बहुत सुख होता है, फल ना मिलने पे बहुत दुख भी होता है। भावनात्मक रूप से वो बहुत, अगर टेनिस का मैच देख रहा है तो मैच जीत जाता है तो एक ऐसे बंदर के समान कूदता है और दूसरा जो है वो एक अर्थवर्म के समय गिर जाता है। वो क्या होता है, तो क्या होता है, ये द्वंद्व हम बहुत देखते हैं, पर ये जो होता है कोई भी स्पोर्ट, कोई भी खिलाड़ी है अगर वो काफी समय तक खेला है तो सब खिलाड़ी जानते हैं कि वास्तव में खेल में हमारे कार्य के अलावा भी, हमारे खेल के अलावा भी और कुछ चीजें हैं जो फल निर्धारित करते हैं, जो फल निर्धारित करते हैं। तो क्या होता है एक और ये क्या है, और वास्तव में उस और वो जो 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 और कुछ जो है जो फल निर्धारित करते हैं तो उसको अनुकूल करने के लिए वो अपना अपना कुछ कार्य करते हैं। तो बहुत से स्पोर्ट्स स्टार जो होते हैं, खिलाड़ी होते हैं, क्रिकेटर होते हैं खास करके, उनके अपने अपने कुछ अंधश्रद्धा होती है। अभी एक खिलाड़ी था, बैट्समैन था, ऑस्ट्रेलिया का बैट्समैन था, कि जब वो बैटिंग करने जाता था तो बैटिंग करने जाने के पहले वो सब चार बार जाके जो पैवेलियन के बाजू में वॉशरूम होते थे, वो वॉशरूम का कमोड का जो ढक्कन है पूरा बंद हो रहा है कि देखता था वो, ताकि अगर खुला रह जाएगा तो मैं आउट हो जाऊंगा। और कई बार क्या होता, अगर जल्दी आउट हो जाता तो आउट होने के बाद पैवेलियन में जाता है, पहले कमोड में जाकर देता खुला है कहीं, और खुला है तो फिर आखिर किसने खुला रखा हो, उसके कारण आउट हो गया। फिर कोई और अभी भारत में क्रिकेटर था, वो कह रहा कि वो मैच का एंड आ रहा है तो फिर वो कह रहा था कि मैं यहाँ पे बैठा हूँ, वहां से उठना ही नहीं चाहिए, मैं अगर बैठा रहूंगा तो वहां पे बैट्समैन अच्छे से बैटिंग करेगा, तो क्या वो मैं यहां से उठ गया तो वो बैट्समैन आउट हो जाएगा। तो क्या कर रहा था, और वो क्या एक समय कैप्टन बन गया था तो पूरे टीम में से किसी को उठने को नहीं दे रहा था, और दूसरे को पिशाब को लेना मत जाओ बोले। तो अभी क्या है, वो अलग अलग प्रकार से उनका भाव था। एक और ऑस्ट्रेलिया का कैप्टन था, तो वो क्या था, उसका आइडिया था कि उसका एक लाल रुमाल था, और वो रुमाल था वो बराबर एक तिहाई पॉकेट से बाहर रखता था और दो तिहाई अंदर, और वो कह रहा था कि वो पॉकेट वो अगर मैं वैसे रुमाल रखूंगा तो फिर वो सारा मैच अच्छी तरह चलेगा, मैं बैटिंग कर रहा हूँ, बॉलिंग कर रहा हूँ, सब कुछ होगा। अगर पहले कैच ड्रॉप कर दिया, ड्रॉप हो गया तो पहले बॉल नहीं देखता था। एक बहुत फेमस टेनिस प्लेयर था, वो क्या करता था, एक कान में रिंग पहनता था, ऐसा था कि जो ये रिंग है दो कानों में पहने तो नहीं कुछ, वो क्या अगर फैशन कर रहे तो दो कानों में पहनना, पर एक ही कान में पहनता था, क्या था, ये जो है इससे मैं अच्छा खेल पाऊंगा। तो क्या होता है, अभी हम जिस सब लगे तो ये सब अब हंसेंगे इस पे, पर इस सब से हम क्या समझ सकते हैं कि ये खिलाड़ी भी समझते हैं कुछ तरह से कि हमारी क्षमता के अलावा भी और कुछ शक्ति है जो फल निर्धारित करती है। तो अभी उनको पता नहीं है वो शक्ति क्या है, तो वो शक्ति क्या है और कैसे कार्य करती है वह उनको पता नहीं है। पर एक भाव क्या है, अगर व्यक्ति इस दुनिया में रहता है कुछ समय तक भी तो समझ जाते हैं कि हमारा जो फल है वो सिर्फ मेरे हाथ में नहीं है। तो आत्मानं केवलं तुयः, तो जो सोचता है कि मैं ही करता हूं वह माया में है, वास्तव में वह मोह में है। और जब हम कहते हैं जो तीसरे अध्याय के 27वें श्लोक में कहते हैं, प्रकृति क्रियमाणानि गुणै कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढात्मा कर्ता अहमिति मन्यते, कर्ता अहम, जो कर्ता कहता मैं करता हूं वह माया में है, हम कहते हैं वो मूल है कहते। पर यद्यपि भगवान ने ऐसे कहा है कि जो खुद को कर्ता समझता है वह माया में है, पर भगवद्गीता के अंत में भगवान क्या कहते हैं, 18वें अध्याय के 63वें श्लोक में, अभी यथेच्छ सिद्ध था कुरु, अभी आपको जैसे करना है वैसे करो, उसका अर्थ क्या है, मतलब आप करता हो। और फिर उसके 10 श्लोक बाद 73वें श्लोक में अर्जुन क्या कहते हैं, करिष्ये वचनं तव, मैं आपका वचन करूंगा, अनुसार कार्य करूंगा। मतलब क्या है, भगवान भी कह रहे हैं अभी आप तुम कर्ता बनो, जैसे तुम करना चाहते हो वैसे करो, और अर्जुन कहते हैं कि मैं आपके वचन अनुसार करूंगा। तो अगर भगवान कह रहे हैं कि मैं कर्ता, जो सोचता है कि मैं करता हूं वो मोह में है, तो भगवान अर्जुन को क्यों कह रहे कि आप करो, अर्जुन कह रहे मैं करूंगा। तो वहां पे मोह क्या है, मोह ये नहीं कि मैं करता हूं, हम करता है, पर मोह यह है कि मैं अकेला करता हूं, वो मोह है, वो मोह। क्योंकि हम तो एक भक्त को भगवद्गीता का प्रवचन दे रहा था एक बार, ऐसे भक्ति शास्त्री कोर्स चल रहा था, तो मैं बोला था अगर हम एक श्लोक सुनते प्रकृति क्रियमाणानि कि हम करता नहीं है, तो कई सवाल आते हैं मन में, तो क्या क्या सवाल आते हैं। तो अलग अलग बोल रहे थे कि एक भक्त बोला कि मैं करूंगा नहीं तो फिर फल नहीं आता है, तो मैं करता हूं, अलग अलग सवाल बोल रहे थे। तो एक भक्त जो था वो बहुत आलसी भक्त था, तो बोलने लगा अगर मैं करता नहीं हूं तो कुछ करने की जरूरत क्या है कुछ करने की जरूरत क्या है बोले, पर क्या है फिर जब प्रसाद का समय आता है तो करने की इच्छा हो जाती है सब कुछ तो सोने का समय आता है तो करने की इच्छा आ जाती है, तो करता तो है हम वास्तव में, पर हम क्या है हम अकेले करता नहीं है, अकेले करता ऐसा सोचना वो मोह है। तो अगर मैं करता हूं मैं समझता हूं कि वास्तव में संपूर्ण ब्रह्मांड में भगवान के अधिष्ठाता में कार्य चल रहा है, और भगवान के अधिष्ठाता में कार्य अगर चल रहा है तो फिर मुझे भगवान की इच्छा के अनुसार कार्य करना चाहिए। तो भगवान की इच्छा के अनुसार कार्य करिए, ये आगे भगवान जब भक्ति योग क्या स्तर पर आएगा तब बताएगा। यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि अगर मैं करता हूं समझता है व्यक्ति तो वो मोह में है। तो अभी इसलिए क्या बोलते हैं इसके विपरीत, अगर मोह में इस तरह से भाव नहीं है तो फिर व्यक्ति मोह में नहीं है, व्यक्ति बंधन में नहीं फंसेगा। यस्य नाहं कृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते हत्वापि सैमा लोकान् नहन्ति न निबध्यते यस्य नाहं कृतो भावो, कि इसका जो इसका अहंकार का भावना है, और अहंकृतो अहंकार जो नहीं है जिसका अहंकार, वास्तव में क्या है अहंकार का मतलब क्या है जो है अहंकार, शरीर जो है एक वाहन के समान है आत्मा के लिए, जो आत्मा सोचता है कि मैं ही शरीर हूं वो क्या है अहंकार, आई एम माई कार, तो मैं मेरा वाहन हूं। इससे ना अहंकृतो भाव, इसमें से ऐसे शारीरिक संकल्पना के का मोह नहीं, इससे ना अहंकृतो भाव बुद्धिर यस्य न लिप्यते, जिसकी बुद्धि बंधन में नहीं फंसी है, जिसकी बुद्धि वास्तव में विकसित है, वो बुद्धिमान है विरक्त है, और ऐसा व्यक्ति हत्वापि सैमान लोका, वो भले ही किसी का वध भी करता है तो न हन्ति न लिप्यते, वो वास्तव में वध नहीं कर रहा है और वह बंधन में नहीं फंसेगा। मतलब अभी यहाँ पे अर्जुन जो सारा थोड़ा थेरोटिकल, थेरोटिकल क्या है तात्विक जो है सारा चर्चा चल रही है, तभी प्रैक्टिकल व्यावहारिक चर्चा आपके ला रहे भगवान अर्जुन, तुम्हें युद्ध करना पड़ेगा। अगर तुम युद्ध कर रहे हो, अगर तुम्हें अहंकार का भाव नहीं है, अगर तुम ये नहीं सोच रहे हो कि अगर मैं तीर मार रहा हूं तो मेरे तीर के कारण ही ये क्षत्रिय का कौरव का वध होगा, मेरे युद्ध के कारण ही सब जीतेंगे। भगवान ने अर्जुन को 11वें अध्याय में बताया है कि ऋते पित्वं न भविष्यन्ति सर्वे कि तस्मात् तमतिष्ठेशो लभस्व जित्वा शत्रुन् भंश्वराज्यं समृद्धं मयैवैते निहता पूर्वमेव निमित्तमात्रं भवसव्यसाची। ऋते पित्वं न भविष्यन्ति सर्वे, तो उसे क्या बताते हैं भगवान उसी आने उसके पहले का 33वां श्लोक है, 32वां श्लोक है, कालोस्मि लोकक्षय प्रवृत्तो लोकान् समाहर्तो निह प्रवृत्ता ऋते पित्वं न भविष्यन्ति सर्वे, ऋते पित्वं न भविष्यन्ति सर्वे, कि आप पांडवों को छोड़ के बाकी सबका वध होने वाला है, बाकी सबका नाश होने वाला है। तो ऋते इसका हमारे आचार्य ने बताया कि दो अर्थ है, एक अर्थ है कि एक्सेप्ट फॉर यू, आपको छोड़ के बाकी सबका वध होने वाला है, और दूसरा अर्थ है ऋते विदाउट यू, विदाउट यू मतलब आपके बिना, अर्जुन अगर आप युद्ध नहीं करोगे तो भी इन सब योद्धों का वध हो ही जाएगा, अगर तुम इसके निमित्त बनाओगे तो तुम्हें उसके श्रेय मिलेगा, तुम्हें उसके तुम्हारी महिमा बढ़ेगी, पर तुम नहीं करोगे तो कोई और करेगा, वो होने ही वाला है, और तुम निमित्त बनो। तो यहां पे क्या बता रहे, अगर हम निमित्त के भाव से करते हैं तो फिर क्या होता है हम बंधन में फंसते नहीं है, हत्वापि सैमान लोका न हन्ति न निबध्यते, हम बंधन में नहीं फंसेगे। तो हम जानते हैं प्रभुपाद जी साधारण उदाहरण देखते थे कि अगर कोई सैनिक है वो भारत पाकिस्तान में चल रहा है और वहां पे पाकिस्तान के सैनिक को मारता है वो, तो फिर क्या होता है न हन्ति न निबध्यते, तो उसको वास्तव में कोई गुनाह के रूप में गुनेगार नहीं बोलते, उसको वास्तव में कोई वीर चक्र भी देते हैं उसे कि आपने बड़ा अच्छा कार्य किया। तो परिस्थिति बड़ी महत्वपूर्ण है और व्यक्ति किस उद्देश्य से कार्य कर रहा है वह महत्वपूर्ण है समझता, न हन्ति न निबध्यते, तो हे अर्जुन, अगर तुम अपना कर्म करोगे पर तुम अहंकार नहीं है, लिप्यते आसक्ति नहीं है, तो तुम बंधन में नहीं फंसोगे। इसके बाद में
यहाँ पे ये महाभारत युद्ध का जो रिजल्ट है वो तय था, क्या हुआ, सभी मरने वाले थे, और यहाँ पे भगवान कह रहे हैं अर्जुन को कि आप नहीं भी हुआ है तो भी ये रिजल्ट होगा। तो इतना बड़े युद्ध का अगर परिणाम तय है पहले से, तो क्या अर्जुन उस युद्ध में निमित्त बनेगा या नहीं, ये तय नहीं था? ये कैसे उसके फ्री विल पे छोड़ा गया, जबकि सबके इतना बड़ा रिजल्ट तय था? तो
अगर कुरुक्षेत्र युद्ध का अगर फल निर्धारित था पहले से, तो फिर क्या उसमें एक प्रधान योद्धा है अर्जुन, क्या अर्जुन युद्ध करेगा, ये भी निर्धारित, ये नियति से पहले से निर्धारित था? अगर नहीं था तो फिर वो कैसे हम कह सकते कि वो फल आएगा ही? तो वास्तव में भगवान किस तरह से किसको निमित्त के रूप में इस्तेमाल करेंगे और वो फल लाएंगे, इसका अगर हम विश्लेषण करने का प्रयास करेंगे तो वो बहुत मुश्किल हो जाता है। क्यों, क्या है, अभी भागवतम का जो अभी आपका विभाग चल रहा है उसमें क्या है, ये पृथ्वी और गाय और बैल जो है, पृथ्वी जो है गाय के रूप में है, बैल जो है वो धर्म है, तो उनकी चर्चा चल रही है। तो उसमें चर्चा जब चल रही होती तो परीक्षित महाराज वहां पे आते हैं, पूछते हैं उनको कि आपको आपके दुख का कारण क्या है, आप इतने दुखी क्यों हो? तो वास्तव में अगर आप देखेंगे तो वो प्रश्न विचित्र है, क्योंकि सीधा सीधा दिख रहा है कि वो जो कली है वो उस बैल को मार रहा है, तो फिर वो सवाल ही विचित्र लगता है कि क्यों पूछ रहे, दिख रहा नहीं क्या मार रहा है मुझे, और फिर वो बैल का जो जवाब है वो भी विचित्र है। वो कहता है कि अलग अभी क्या है, हमारे दुख का जो कारण है वो समझना बड़ा मुश्किल है, कुछ लोग कहते ये कारण है, कुछ लोग कहते वो कारण है, कुछ लोग कहते वो कारण है, और फिर अर्थ संघ क्या होता है, और तो ये दोनों एक विचित्र सवाल है, उसका विचित्र जवाब है। तो उसके बाद परिचित मान होते तुम बहुत बुद्धिमान, मैं समझ गया तुम वास्तव में धर्म ही हो, तुम ऐसे बोल सकते हो और कोई बोल नहीं सकता है। अब वहां पे एक क्या भाव आता है, एक विचार आता है वहां पे कि जो सोचता है कि अगर कोई गुनाह कर रहा है मुझ पे, कोई अत्याचार कर रहा है, उसको अगर दोष दूंगा तो जो उसको गति मिलेगी वही मुझे भी गति मिलेगी। उसका मतलब क्या है, ऐसे नहीं है कि किसी को गुनाह किया है तो उन्हें का फल नहीं देना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से चोरी करता है तो बोलता है कि इसने चोरी की, तो उसको जो जेल जाएगा तुम भी जेल जाओगे, ऐसे नहीं है। अभाव क्या है, वहां पे दोनों को वही गति मिलेगी, मतलब दोनों उसी अज्ञान के स्तर पर रहते हैं। अगर मैं सोचता हूँ कि इसने मेरे प्रति कार्य किया है तो वास्तव में क्या हुआ, मेरे कर्म का फल उसके द्वारा मुझे मिल रहा है, तो वह अज्ञान में है, वह सोच रहा है मैं करता हूँ, और मैं सोचता हूँ कि वो करता है तो मैं भी अज्ञान में, तो हमको इस स्तर पर भी कार्य करना है। अगर राजा राज दरबार में कार्य राजा की जिम्मेदारी इस्तेमाल कर रहा है तो फिर उसको, हाँ तुमने ये गुनाह किया तुमको ये फल देना चाहिए, तुमको सजा मिलनी चाहिए, हो सकते हैं। पर साथ साथ तो ज्ञान इस चीज़ देखना है, मैं समझना है कि वास्तव में हमारे ही कर्मों का हमें फल मिल रहा है। तो इसलिए तो इस चर्चा से हमारे आचार्य ने इस पे बहुत विश्लेषण किया इस संवाद पे, और बताते हैं कि संवाद का महत्व यह है कि हमारे जीवन में कार्य किस तरह से होते हैं, किस तरह से कौन सा फल आता है, वह समझना बड़ा मुश्किल है। तो इसलिए अभी कौन व्यक्ति कैसे कार्य करता है और उससे फल में क्या योगदान होता है, वह समझना मुश्किल, वह सब जगह कठिन है। तो अगर हम कहते हैं अगर प्रभुपाद जी में बुढ़ापे में वो गए नहीं होते अमेरिका प्रचार करने के लिए, तो चेतन महाप्रभु की भविष्यवाणी कैसे पूरी होती? तो अभी ये क्या है, ये हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, क्योंकि है वास्तव में प्रभुपाद जी गए, प्रभुपाद जी की वो चेतन महाप्रभु को पूरा करने की गलत इच्छा थी, पर अगर नहीं कहते गलत प्रभुपाद तो क्या होता था, चेतन महाप्रभु योजना करते कोई और जाते थे, पर प्रभुपाद ने चेतन महाप्रभु को प्रेरित किया, सॉरी चेतन महाप्रभु ने प्रभुपाद जी को प्रेरित किया। तो उसी तरह से क्या है, ये सत्य है इस जगत में कि भगवान किसी न किसी व्यक्ति को उचित पद्धति से अपना निमित्त बना लेंगे, तो एक व्यक्ति नहीं बनेगा तो कोई और व्यक्ति बन जाएगा। तो ये कैसे होता है, वास्तव में हम कठपुतली नहीं है, हमारे पास क्या स्वेच्छा जरूर है, पर भगवान हमारी स्वेच्छा का इस तरह से इस्तेमाल करते हैं कि जिससे वह उचित फल आ जाएगा। तो आप जानते हैं कि सबसे अच्छा मैनेजमेंट क्या है, सबसे अच्छा मैनेजमेंट मतलब क्या कि सब कुछ मैनेज हो रहा है और मैनेजर दिखाई नहीं दे रहा है, मतलब क्या कोई मैनेजर ये करो ये करो ये करो, ये नहीं हो रहा ये नहीं हो रहा है, तो वो क्या मतलब वो मैनेजमेंट प्लानिंग नहीं किया अच्छी तरह से, पर सबको अपने अपने सब अपना अपने सर कार्य करते हैं अच्छी तरह से, मतलब ये मैनेजमेंट बहुत अच्छा चल रहा है। तो ऐसे भगवान का मैनेजमेंट सबसे अच्छा है, तो बड़ा वो खुद हमेशा उसको बीच बीच में ना आना पड़ता है, पर वो जो जो उनको फल चाहिए वो अलग अलग व्यक्तियों को इस्तेमाल करके वो फल लाते हैं, पर वो जो किसी को इस्तेमाल करते हैं तो उसमें वो व्यक्ति की स्वेच्छा को भी देखते हैं और जो उस व्यक्ति के साथ कार्य कर रहे हैं या उस व्यक्ति के कार्य से जिनको प्रभाव होने वाला है उनके कर्म का फल भी उनको देते हैं। तो ये दोनों कैसे होता है एग्जैक्टली ये हम हमारे तर्क से एनालाइज नहीं कर सकते। क्या है कि वास्तव में हम ये भी हम ये भी देख नहीं सकते कि अगर अगर से आज प्रसाद खाने का मेरा पेट बिगड़ गया तो अभी ये मैंने आज प्रसाद जो खाया उसके अनुसार पेट बिगड़ गया, पूर्व जन्म का कुछ कर्म था उसके अनुसार पेट बिगड़ गया, तो क्या है वास्तव में हम हमारी बुद्धि जितनी उतने इस्तेमाल कर सकते हैं। साधारणतः हम क्या सोचेंगे मैंने खाने में कुछ गड़बड़ की क्या, तो कई बार हम देखते हैं कुछ लोग होते हैं कि वो अपने जिह्वा को एक कन्वेयर बेल्ट के समान लेते हैं, कुछ भी खाते हैं उसमें, पर क्या होता है उनका सेहत अच्छा रहता है। और कुछ और अच्छे लोग होते हैं कि थोड़ा भी खाने में कुछ समस्या हो गई तो बहुत गड़बड़ हो गई तो फिर बहुत समस्या आती। तो क्या है पूर्व जन्म के अनुसार किसी का जो पाचन शक्ति बहुत अच्छी है तो यहाँ पर थोड़ी बहुत कम ज़्यादा हो गया तो फर्क नहीं पड़ता है, किसी की जो पाचन शक्ति बहुत कम है तो थोड़ा भी कम ज़्यादा हो गया तो बहुत फर्क पड़ता है, पर क्या है जब समस्या आती है तो हम हमारे बुद्धि से इस्तेमाल करके देख सकते हैं। पर कभी कभी ऐसे होता है कि कोई व्यक्ति साधारणतः क्या है हम जिस तरह से खाते हैं उसके अनुसार फल होता है, तो अगर मैं ठंडी में कोई बहुत ठंडा कुछ पीऊँगा तो क्या सर्दी हो जाएगी, ये स्वाभाविक है, पर कुछ कुछ परिस्थिति में वैसे नहीं होता है। तो साधारणतः हम क्या देखते हैं हम हमारी बुद्धि के अनुसार कॉज एंड इफेक्ट जो कार्य है और परिणाम है उसका हम संबंध देखने का प्रयास करते हैं, पर जब हम वो देख नहीं पाएंगे तब हम समझते हैं कि हमें भगवान के और भी कुछ कारण इस्तेमाल है, पर हम उसको और विश्लेषण नहीं कर सकते। ज्ञायं ज्ञेयं परिज्ञाता त्रिविध कर्म चोदना कर्णं कर्म कर्तेति त्रिविध कर्म संग्रह। तो ये और अगला श्लोक जो है ये थोड़ा टेक्निकल है, तो ये मैं एक्चुअली व्हाइट बोर्ड के बिना समझा नहीं पाऊंगा, मैं प्रयास करते रहता हूँ। क्या है भगवान बता रहे हैं कि अभी भगवान ने पिछले श्लोक में क्या बताया कि खुद को तुम करता अगर जो नहीं समझता है जो वह व्यक्ति बद्ध नहीं होता है, तो अभी न हंति न निबद्धते। तो क्या है जब हम कर्म करते हैं कर्म में दो चीजें होती, एक तो ज्ञान इंद्रिया होती है, कोई मैं कर्म कर रहा हूं तो उसमें पहले मैं कुछ ज्ञान प्राप्त करता हूँ, अगर मुझे भूख लगी है या अगर मुझे देखता हूँ कि यहाँ पे गर्मी आ गई है तो पहले मैं मेरे ज्ञान से देखता हूँ कि अच्छा यहाँ पे गर्मी बहुत बढ़ गई है, फिर मैं कर्म करता हूँ कि मैं फैन ऑन कर दूंगा। तो कोई भी कार्य होता है उसमें ज्ञान प्राप्ति होती है पहले और फिर उसके बाद में कृति होती है। तो अभी भगवान ये ज्ञान प्राप्ति का पहले विश्लेषण करेंगे और फिर कृति का विश्लेषण करेंगे। तो ज्ञान प्राप्ति में क्या है ज्ञानम ज्ञेयम परिज्ञाता, तो त्रिविधा कर्म चोदना, तो कर्म करने में पहले क्या होता है ज्ञेय क्या जानना है। अगर अगर मुझे गर्मी लग रही है तो सबसे पहले क्या क्या है पसीना आ रहा है मेरे कपड़े में पसीना आ रहा है चेहरे पर पसीना आ रहा है, तो वो क्या है वो जो ज्ञान प्राप्त करने का विषय है। अच्छा यहाँ पे गर्मी आ गई है, सबसे पहले ज्ञेय जानते हैं आप ज्ञेय में क्या होता है, ज्ञेय मतलब जो चीज़ के बारे में जानकारी प्राप्त करें उसको ज्ञान ज्ञेय कहते हैं, परिज्ञाता मतलब ज्ञाता जो जानकारी प्राप्त कर रहा है, और तीसरा है ज्ञान मतलब ज्ञान प्राप्त करने का कार्य जो होता है ज्ञान प्राप्त करने। हम अभी क्या है गर्मी काफी समय तक होती है, अगर हम सुबह जप कर रहे होते हैं तो क्या होता है सुबह पहले अंधकार होता है फिर थोड़ी थोड़ी रोशनी आने लगती है फिर अचानक सूर्योदय हो गया अभी, तो क्या होता है वो सूर्योदय अपने हो रहा है धीरे धीरे, पर एक समय हम सब अरे सूर्योदय हो गया ध्यान में आता है, तो क्या है ज्ञेय है यहाँ पे कि सूर्योदय हुआ है कि नहीं, तो ज्ञाता वो व्यक्ति है जो फिर ज्ञान का, अरे अभी जिस पल में सूर्योदय हो जाता है तभी समझ आता है कि ज्ञान सूर्योदय हो गया है। तो जब हम ज्ञान प्राप्ति करते हैं उसमें तीन चीजें होती है, जो विषय जिसके वहां जानकारी कर रहे हैं, जो जानकारी प्राप्त कर रहा है, और वो जानकारी प्राप्त करने की का कार्य जो होता है। और फिर उसकी उसी तरह से जब हम कर्म करते हैं तो उसमें क्या है, कर्णम कर्म करते त्रिविध कर्म संग्रह, कर्णम कर्म करते। तो कर्म मतलब जो कार्य करना है मुझे, तो अगर मुझे गर्मी हो गई मुझे फैन ऑफ करना है तो क्या है कर्णम, तो क्या है मैं बैठा हूं तो मुझे उठना पड़ेगा और फिर बटन हाथ ऊपर करूंगा फिर मैं बैगन करूंगा। पर अगर मेरे पीठ में दर्द हो रहा है तो शायद मैं उठ ही नहीं पाऊंगा, अगर मैं हाथ फ्रैक्चर हो गया तो मैं उसको ये बंद नहीं कर पाऊंगा। तो कर्णम आता है, कोई भी कार्य करना है उसमें कर्णम महत्वपूर्ण है उसके लिए जो है। फिर कर्णम, वो कर्णम का इस्तेमाल करके मैं कर्म करता हूं, और जो कर्म करने वाला है वो कौन है, वो करता है। तो इस तरह से जो ज्ञान और कर्म के तीन तीन विभाग हो गए, ज्ञान के तीन विभाग है और कर्म के तीन विभाग है। अभी भगवान इनको तीन गुणों में विश्लेषण करेंगे ताकि कर्म हमारा, हम जो कर्म करते हैं वो सत्वगुण रजोगुण तमोगुण में है, ये समझने के लिए इन जो ज्ञान के विभाग है उसका उसका वो विश्लेषण करेगा आगे। पर अभी जो छह है इसको प्रभुपाद, इसको भगवान छह को अभी कंडेंस करेंगे, छह को और कम करेंगे। कैसे करते हैं वो देखते भी। ज्ञानं कर्म च कर्ता च, त्रिधैव गुणभेदतः रोचते गुण संख्याने, यथाश्रुणुतान्यपि। तो अभी जो जो छह थे पिछले श्लोक में उन छह को भगवान ने भी तीन कर दिया, ज्ञानं कर्म च कर्ता च त्रिधैव गुणभेदतः, ये तीन जो है तीन गुणों में है। और प्रोच्यते गुण संख्याने, और ये गुण में के अनुसार कैसे होते हैं वह मैं तुमको भी समझाऊंगा। यथावच शुणतान्य, ये शुण हो गया। तो अभी पिछले छह क्या थे, ज्ञान ज्ञेय और परिज्ञाता, और यहाँ पे कर्ता कर्म और कर्म। तो अभी क्या है, व्यक्ति तो एक ही है इसीलिए कर्ता और परिज्ञाता एक हो गया, तो छह का पांच हो गया, ठीक है, छह का पांच हो गया, ज्ञान कर्ता और परिज्ञाता एक है। फिर उसके बाद में यहां पे ज्ञानं कर्म च कर्ता च, तो ज्ञानं ज्ञेय और जो जो ज्ञान करने के जो ज्ञान जिसके बारे में ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, तो वास्तव में इस भौतिक जगत में जिस चीज के बारे में हम ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं वह तो स्थिर है, उसका मतलब वह जो जैसी है वैसे ही है। अगर कोई अगर शहर है तो वह सत्वगुण में है, शहर है रजोगुण में है, जो जंगल है वह सत्वगुण में है, तो वैसे का वैसे है, तो उसको मैं कुछ फर्क नहीं कर सकता। जो 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 अगर मुझे जो कर्म करना है, मेरे कर्म करते समय ज्ञेय को मैं परिवर्तित नहीं कर सकता, जो मेरा निर्धारित कर्तव्य है उसमें ज्ञेय वैसे ही रहने वाला है। तो क्षत्रिय है उसको युद्ध करना है तो उसका जो कर्मभूमि जो है वो राजसिक है, उसको परिवर्तित नहीं कर सकता। तो इसीलिए वह हमारे हाथ में नहीं है। अभी क्या कर रहा है, ये सब विश्लेषण क्यों हो रहा है कि हम सत्वगुण में कैसे कार्य कर सकते हैं, वो उसके लिए भगवान सारा विश्लेषण कर रहे हैं। इसीलिए ज्ञेय को भगवान निकाल देते हैं, तो ज्ञेय को निकाल देते तो क्या रहता है, ज्ञान रहता है। तो अभी क्या हो गया, परिज्ञाता ज्ञान और ज्ञेय, तो परिज्ञाता और कर्ता एक हो गया, तो परिज्ञाता निकल गया। फिर ज्ञेय क्या है, वो ज्ञेय बदल, वो हमारे नियंत्रण में नहीं, जो वस्तु है वैसे की वैसे ही है, तो इसलिए वह मैं परिवर्तित नहीं कर सकता, इसलिए उसको भी निकाल दिया। अभी क्या रह गया, फिर यहाँ पे कर्णम कर्म करते थी। तो अभी हमारे जो कर्णम है वो कर्णम तो वैसे ही रहने वाले हैं, उसको मैं परिवर्तित नहीं कर सकता। अगर मैं गायक हूं तो मेरा जैसे आवाज है वो आवाज वैसे ही रहने वाला है, ऐसे नहीं होता है कि यहाँ पे कर्णम मतलब क्या बोल रहे हैं हम, जो औजार है हमारे कार्य करने के लिए उसको मैं परिवर्तित नहीं कर सकता हूँ, जो आवाज है वो आवाज वैसे ही रहने वाला है। तो अगर मेरी आंखें हैं तो आंखों को मैं बदल नहीं सकता हूँ, तो आंखों के भी चेतना है उसको बदलनी है मुझे, पर जो हमारी आंखें हैं वो वैसे की वैसे, तो उसको व्यक्ति बदल नहीं सकता है। तो अभी ये क्या है, ये सारा विश्लेषण क्यों हो रहा है कि हम हमारी चेतना हम हमारा कर्म कैसे सात्विक कर सकते हैं, इसीलिए करणम कर्म करते थी, तो इसलिए कर्णम भी निकाल दिया। तो अभी क्या है, छह में से तीन बज गए। ज्ञानम कर्म च कर्ता च तिथैव गुणभेदतः। तो अभी इन तीनों का कैसे सत्वगुण रजोगुण तमोगुण में होता है, यह भगवान अगले नौ श्लोकों में वर्णन करेंगे।
ये सब क्यों बता रहे हैं, क्योंकि सत्वगुण में हमें कार्य,
हाँ, तो हम
समझ में नहीं,
नहीं जब हम समझेंगे मैं जो ज्ञान प्राप्त कर रहा हूँ सत्वगुण में है कि नहीं, जो कर्म कर रहा हूँ सत्वगुण में है कि नहीं, तो उस सबसे मैं सत्वगुण में ला सकता हूँ खुद को। सत्वगुण में लाऊंगा तो ना अहम कृत भाव उसमें कार्य करूंगा, तो मेरा बंधन में फंसने की संभावना कम है, तो उसके लिए सारा विश्लेषण हो रहा है। समझ रहे हैं आप? तो अभी सबसे पहले भगवान तीन गुणों में जो ज्ञान है उसका वर्णन करते हैं। सर्वभूतेषु एनैकम् भावमव्ययमीक्षते
भावमव्ययमीक्षते
अविभक्तं विभक्तेषु
अविभक्तं विभक्तेषु
तज्ज्ञानं विद्धि सात्विकं
तज्ज्ञानं विद्धि सात्विकं
सर्वभूतेषु एनैकम्। जिसके इसमें सब जीवात्मा का एक भाव देखते हैं, भावम अव्ययमीक्षते, कि सब जीवात्मा अलग अलग है पर सब में एक ही समान का आत्मा है जब हम देखते हैं, तो फिर क्या होता है, अविभक्तम विभक्तेषु, वह जो एक आत्मा एक एक आत्म का एक आध्यात्मिक भाव है, एक आध्यात्मिक स्वभाव है, एक आध्यात्मिक प्रवृत्ति है, वही विभाजित हुई है सब अलग अलग में। तो क्या है, तज्ज्ञानम विद्धि सात्विकम, तो ये ब्रह्म का साक्षात्कार है। सत्वगुण में हम भगवान का साक्षात्कार नहीं होता, उसके लिए शुद्ध सत्व चाहिए, पर सत्वगुण में मतलब सब जीवों के, कोई भारतीय है, कोई पाकिस्तानी है, कोई मान कोई स्त्री है, कोई पुरुष है, कोई नौजवान है, कोई वृद्ध है, ये सब भेद है शारीरिक स्तर पे। पर जो भक्त होते हैं उसके परे क्या देखते हैं, भक्त देखते हैं कि वास्तव में ये आत्मा है, और ये आत्मा का मैं भगवान से कैसे जोड़ सकता हूँ वो देखने का प्रयास करते हैं। तो इस तरह से ये सात्विक है, भावम अव्ययमीक्षते, तो इस प्रकार से भौतिक प्रकृति के परे जाकर जो आत्म तत्व को देखता है वह व्यक्ति सत्वगुण में है। जो ज्ञान इस प्रकार से देख सकता है वो ज्ञान सात्विक ज्ञान है। तो जो ज्ञान भौतिक स्तर पे ही रहता है वह राजसिक ज्ञान है, उसका वर्णन भी अगले श्लोक में आएगा। पृथक्त्वेन तु यज्ज्ञानम् नाना भावान् पृथक विधान वेत्ति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानम् विद्धि राजसम्। तो पृथक्त्वेन, तो जिससे अलग अलग पृथक भेद देखते हैं, नाना भावान् पृथक विधान, नाना भावान् मतलब कि जैसा हमको बाहर भेद देखते हैं, व्यक्ति बाहर जैसे दिखता है वैसे ही अंदर भी स्वभाव कहते हैं। मतलब यह व्यक्ति कैसे, क्या बहुत पहले भेदभाव होता था कि यह व्यक्ति काला है, यह व्यक्ति गोरा है, तो अमेरिका में बहुत हुआ भेदभाव कि काले व्यक्तियों को गुलाम बना के रखो, उनके पहले बहुत अत्याचार हुए, तो काला व्यक्ति मतलब कम बुद्धि वाला होगा। तो ये जो है यह भाव उचित नहीं है। तो जो देखता है वास्तव में जो यूरोप के लोगों ने जब सारे विश्व भर में जो राज्य किया था, जब ब्रिटेन ने राज्य किया था, वक्त लोगों ने राज्य किया था, तभी क्या था उनका एक कविता रडियार्ड किपलिंग, उसने कविता लिखी थी कि वास्तव में जो सफ़ेद मानव है उसकी जिम्मेदारी है कि सारा बाकी मानव समाज है यह बिल्कुल असंस्कृत है, तो उनको सुसंस्कृत करना यह सफ़ेद मानव की जिम्मेदारी है, और यह हम बड़े क्या निष्काम भाव से यह कर रहे हैं। तो सुसंस्कृत करना मतलब क्या, उसकी संकल्पना क्या थी कि जैसे हम हैं हम सुसंस्कृत है बाकी सब असंस्कृत है, तो हमारे जैसे सबको बनाना यह करके बाकी सब लोग जानवरों के समान जी रहे हैं, तो हम हमारे उनको वास्तव में ऊंचे स्तर पर ला रहे हैं, तो ऐसे भाव था उनका। तो क्या है, वह बाह्य रूप से देख रहे थे कि ये है, ये ऐसा है, वो वैसा है, वो वैसा है, पर ऐसा जो भाव है वह केवल क्रिश्चियन धर्म में कुछ लोग तो कहते हैं कि वास्तव में जो शरीर है शरीर वो आत्मा है का स्वीकार करते हैं, पर अभी सब क्रिश्चियन ऐसा नहीं है, पर क्रिश्चियनिटी में एक विचारधारा बहुत प्रभावशाली है, वो ऐसी है कि वास्तव में शरीर और आत्मा अलग है पर वो अलग नहीं है, क्योंकि आत्मा शरीर के बिना जी ही नहीं सकता है। इसलिए क्या सोचते हैं वो कि कई बार अभी इन धर्मों में देखते हैं कि वो कब्र में डालते हैं व्यक्ति को। तो कब्र में क्यों डालते हैं? उनका भाव होता है कि जब जजमेंट डे आएगा, जब निर्णय करेगा भगवान, तो वह शरीर से पुनः जागृत हो जाएगा, जैसा अभी है वैसे पुनः वो स्वर्ग में आ जाएगा व्यक्ति। तो फिर अभी ये भाव क्या होता है, उससे बहुत सी समस्या आती है। क्या अगर जैसे अभी शरीर है, अब शारीरिक स्तर पर देखें तो क्या वो दो तीन दिनों में शरीर जो होता है वो नाश हो जाता है, रहता नहीं उसको। उसके अलावा ऊपर से अगर कोई व्यक्ति 70-80 साल का बूढ़ा है, सारा शरीर जर्जर है, और वो शरीर उसको सनातन काल के लिए स्वर्ग में मिलने वाला है, तो स्वर्ग नरक के समान बन जाएगा। तो अब नहीं, वो कहते हैं वहां पे नरक स्वर्ग में सबको जो शरीर है वो नौजवान शरीर मिलेगा, पर अगर कोई ऐसा बालक है जो 2 साल का अंतर में मृत्यु होगी तो उसको उसका नौजवान शरीर कभी बना ही नहीं, तो उसको तो शरीर मिलेगा फिर। तो क्या है, तर्क के स्तर पर जब जाते हैं तो फिर इससे बहुत समस्या आती है। मैं एक बार ऐसे ही चेन्नई में प्रचार करने गया था, तो आ रहा था ट्रेन में, तो एक क्रिश्चियन प्रचारक आ गए थे वहाँ पे। वो बोले लग गया, वो थोड़ा बहस करने लगे। तो फिर वो बोला कि तो प्रभुपाद जी से बोलते दाउ शैल नॉट किल, तो उसे शुरू किया। तो बोले कि आपको अगर मरने का, आपको अगर जो जो हत्या हो रही है उसकी चिंता है, तो जानवरों की चिंता क्यों करते हो? जो गर्भ में जो भ्रूण है, जो संतान है, उनकी इतनी हत्या हो रही है, गर्भपात हो रहा है, उसको क्यों नहीं रोकते आप? बोले अच्छी बात है, तो आप भी मानते हो कि गर्भपात ये गलत है? हाँ बिल्कुल, वो तो वध है बिल्कुल, उसको रोकना चाहिए। ठीक है, तो उनकी क्या संकल्पना होती है कि एक ही जन्म है, एक जन्म के बाद नरक है या स्वर्ग है। मैंने उसको पूछा फिर, ठीक है गर्भ में जो शिशु है उसकी मृत्यु होती है तो वो कहाँ जाता है? बोला है क्योंकि वो निष्पाप है, क्योंकि उनकी संकल्पना क्या है कि जब पुरुष और स्त्री का संयोग होता है तभी आत्मा की निर्मिति होती है, तभी आत्मा की निर्मिति होती है उनका, क्योंकि पूर्व जन्म को नहीं मानते, पुनर्जन्म को भी नहीं मानते। तो फिर वो बोले क्योंकि वो निष्पाप है इसीलिए क्या है वह स्वर्ग में जाएगा। तो फिर मैंने जीवन का उद्देश्य क्या है, स्वर्ग में जाना। फिर बोला तो सबको गर्भपात कर दो, सब स्वर्ग में चले जाए कर सकते बड़ा पूरी बात हो जाएगी। नहीं देखो, स्वर्ग में जाना जो अच्छी बात है ना, तो अगर वो जन्म लेगा शायद ऐसे होगा कि वो जीसस के बारे में पता ही नहीं चलेगा, उसको जीसस की शरण नहीं जाएगा, तो वो नर्क में जाएगा फिर वो तुम्हारे सब तो ज्ञान के अनुसार। तो आप गर्भपात कर रहे हैं तो उसको स्वर्ग में भेजिएगा, गर्भपात नहीं करते हैं तो नर्क में जाने की संभावना बढ़ा देते हैं, तो गर्भपात करना अच्छा है। तो क्या है, ये भाव है कि हमारा तो शरीर और आत्मा लगभग एक ही है, उसको ऐसे समझना, ये क्या है राजसिक है, ये सात्विक नहीं है। अगर हम ओल्ड टेस्टामेंट जेनेसिस में पढ़ते हैं, बाइबल का जो पहला किताब उसको जेनेसिस नाम है, उसमें पढ़ते हैं तो स्पष्ट रूप से बताया गया कि जानवरों में भी आत्मा है, और उनको जो हर एक जीव में आत्मा है, ऐसे नहीं कि सिर्फ मानव में आत्मा है, तो आत्मा सब में है वास्तव में, और वो आत्मा बाह्य रूप से शरीर अलग है पर अंतरंग भाव से एक ही है। पर जो अंतरंग और बाह्य भाव को अलग मान लेते हैं, तो जो प्रभुपाद जी पूछते किसी एक कन्वर्सेशन में, ये अगर आप कहते हैं कि मान जानवरों में आत्मा नहीं है तो जानवरों में चेतना है, तो चेतना कहाँ से आती है? तो वो कहते हैं, तो एक क्रिश्चियन विचारवंत था, उसने बताया कि वास्तव में 3 प्रकार की आत्मा होती है। एक जो पेड़ों में आत्मा होती है, और दूसरे जानवरों में आत्मा, तीसरे मानव में आत्मा होती है। तो जो पेड़ों में जानवरों में आत्मा होती है वह अशाश्वत होती है, जैसे वो मर जाएगा तो वही मर जाएगा, आत्मा भी नाश हो जाएगा, सिर्फ मानव जो आत्मा है वो शाश्वत होती है। तो क्या है, ये भी सब विचित्र है, ये राजसिक ज्ञान है। ये क्या है, यह व्यक्ति सर्वेश भूतेश, जैसे जैसे रूप देख रहे वैसे ही अंदर का भाव है, वैसे ही अंदर आत्मा का कुछ मतलब भौतिक स्तर के परे जब व्यक्ति देख नहीं पाता है वो रजोगुण का लक्षण है। फिर इसके बाद में यत्तु कृत्स्नवदे कस्मिन् कार्ये सत्तमहेतुकम् सप्तमहेतुकम् अतत्वार्थवदल्पं च तत्तामसमुदारितम्। तो तामसमुदारितम्, तामस का क्या है, तो कृत्स्नवदे कस्मिन्, तो एक ज्ञान के एक विभाग को लेना और उसको ही कृष्ण और उसको ही सब कुछ बोल देना कि यही सब कुछ है, कार्य सक्तम, और उससे बहुत आसक्त हो जाता है आहेतुकम। अभी आहेतुकम मतलब ये आहेतुक सकारात्मक नहीं है, आहेतुक की भक्ति जो होती है नहीं, आहेतुकम मतलब यहाँ पे क्या है कि वास्तव में पूरी तरह से विचार नहीं किया व्यक्ति ने वो क्या क्या हेतु है, क्या फल है, किस तरह संबंध है, वो समझ में नहीं आता है। अतत्वार्थवत अल्पम, तत्व समझ में नहीं आता है और अल्पम च, अल्प है वो, ऐसा जो ज्ञान है वह तामसिक है। तो आजकल क्या है, नास्तिकवादी लोग होते हैं वो कहते, वो मटेरियल्स होते हैं, नास्तिकवादी लोग होते हैं भौतिक होते हैं कि जो भौतिक तत्व है वही एक ही तत्व है, उसके अलावा कुछ है ही नहीं वो कहते। तो जो है, तो अभी भौतिक तत्व से चेतना कैसे आई, उसका कोई उसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है उनके पास, पर फिर वो कैसे तो भी आ गए और कैसे आई वो बता नहीं है, फिर भी बोलते हैं कि सिर्फ भौतिक तत्व ही है, उसके अलावा कुछ है ही नहीं। हमारी भावनाएं कैसे आ गई, अगर एक माता अपने शिशु को देखती है तो माता के रूप में प्रेम आता है, वो क्यों आता है, वो क्या है, उसके दिमाग में कुछ रसायन आ जाते हैं, उसके कारण वो आ गए। तो अभी क्या है, वो वैज्ञानिकों ने प्रयास, वैज्ञानिकों ने बोला था कि क्या हमारी सारी भावनाएं हैं वो क्या दिमाग में रसायन आती है उसके अनुसार, तो हम भविष्य में क्या करेंगे, आपको दिमाग को बटन दे देंगे, तो आपको जैसे भावना चाहिए, आपको एक्साइटमेंट चाहिए तो एक्साइटमेंट का बटन दबा दो तो आप एक्साइटेड हो जाएंगे, फिर सीरियसनेस बनना है, आपको सीरियस बनना है तो सीरियसनेस का बटन दो, सीरियस हो जाओ, आपको सुखी बनना है, हैप्पीनेस का बटन दबा दो, सुखी हो जाओ। तो क्या है, वो बोले ऐसे करेंगे। तो जब उन्होंने ऐसे प्रयास किया तो वो समझे कि वास्तव में ये भावनाएं जो है यह चेतना का लक्षण है, ये चेतना का, वो चेतना का स्रोत नहीं है। वो कैसे है कि जब मैं हंसता हूं तो मेरे चेहरे पे, जब मैं सुखी होता हूं अंदर से तो मेरे चेहरे पे स्मित आ जाता है। तो क्या है, मेरा सुख ये अंतरंग भावना है और चेहरे पे स्मित आना ये बाह्य प्रभाव है, इन दोनों में संबंध है, पर क्या है, यह एक अंतरंग है, कारण है, और दूसरा इसका प्रभाव है। अगर कोई कहता है कि वास्तव में अंतरंग कोई सुख नाम की चीज है ही नहीं, सिर्फ चेहरे पे हंसी आना यही सुख है, अंतरंग सुख का कोई भावना ही है, तो क्या करेगा व्यक्ति, अगर बोलेगा कि मैं क्या करता हूं, एक मशीन लाता हूं और मशीन से तुम्हारे चेहरे के जो मसल्स है उसको स्मित में परिवर्तित, तो अगर वैसे कर देंगे क्या उसे सुख आने वाला है, नहीं। भले अगर कोई बहुत मायूस है थोड़ा सा स्मित करता थोड़ा अच्छा लगेगा, पर क्या है, वो अंतरंग सुख नहीं है। तो सिर्फ बाह्य चीजों को पूरा सब कुछ मान लेना वह क्या गलत है। तो अभी क्या है, अगर छोटा लड़का होता है तो रिश्तेदार से मिलता है तो खेलना आता, क्या होता है तो उसके पेट में गुदगुली कराते हैं तो वो हंसने लगता है, तो जब हंसने लगता है इस तरह से तो क्या वो सुखी है उस समय, वो वास्तव में असली सुख नहीं है। अगर वो असली सुख होता तो क्या होता था, हम सब अपना गुदगुली मशीन बना देते थे और क्या जिंदगी भर गुदगुली करते रहो। तो वास्तव में क्या है, यह सुख नहीं है। तो इसलिए ये छोटी सी चीज को लेके उसको ही सब कुछ बना देना ये तामसिक है। तो नास्तिकवादी ऐसे ही करते हैं, अतत्वार्थवत अल्पम च, तत्व का कुछ समझ नहीं है और छोटी सी चीज को लेते हैं और उसको सब कुछ बना देते हैं। ऐसे कहते स्पेशलाइजेशन होता है, specialization means to know more and more about less and less,
yeah.
और super specialization means to know everything about nothing. तो विशेष क्या होता है, तो मतलब क्या है, इस तरह से जो बहुत सारा ज्ञान होता है पर बहुत छोटी चीज के बारे में ज्ञान होता है वो, तो एक तरह से स्पेशलाइजेशन अच्छा है पर वास्तव में पूरा जो चित्र है उसको भूल जाते हैं तो फिर वो उचित नहीं है। तो इसीलिए एक चीज को जैसे कहते हैं ऑपरेशन सक्सेसफुल पेशेंट डेड, कहते अगर कोई कोई हृदय का सर्जन है बोलता है कि मैं एक्चुअली वास्तव में ऐसे अनुभव होता, मुझे एक बार टीवी हो गया था, तो वो हृदय में टीवी था, तो डॉक्टर को संशय था कि शायद वो नीचे इंटेस्टाइन में क्या बोलते हैं अंतड़ियों में चला गया है। तो फिर वो उसके एक स्पेशलिस्ट के पास लेके गए थे, तो स्पेशलिस्ट के पास लेके गए कि तो वो जो स्पेशलिस्ट था नहीं तो वो अंतड़ियों का स्पेशलिस्ट था, तो उसके पास लेके गए और फिर मैं सारा रिपोर्ट दिखाया, तो मैंने उनको तो जो एक्सरे था नीचे क्या एक्सरे ऊपर का डायफ्राम होता है वो विशेष वो विभाजन करता है, वहाँ पे ऊपर छाती है नीचे अंतड़िया है, तो जो बता रहे थे कि मैंने बताया सर रिपोर्ट पहले अंतड़ियों का रिपोर्ट बताया फिर चेस्ट का रिपोर्ट बताया, नहीं चेस्ट का रिपोर्ट मत दिखाओ, मेरा काम सिर्फ आपके डायफ्राम के नीचे, ऊपर नीचे देखने की जरूरत नहीं है। तो क्या है, अगर वो स्पेशलिस्ट है उस समय ठीक है वैसे कार्य कर रहा है, पर अगर कोई डॉक्टर है वो बोलता है कि मैं तुम्हारे हृदय का सर्जरी करूंगा, हृदय ठीक कर दूंगा, पर हृदय को ठीक करते समय अगर फेफड़ा कट गया तो मेरी जिम्मेदारी नहीं है, तो फिर क्या है, वो किसी चीज को हम उसके पूरे संदर्भ से बाहर निकाल के देख नहीं सकते। तो तमोगुण में क्या होता है, एक ही चीज को देखते हैं, बाकी चीजों को देखते ही नहीं है। इसलिए अतत्वार्थवत अल्पम च, जो ऐसे है जो लोग क्या देखते थे, जब आप मानव पहले पैर से चलता था तो पैर से क्यों चलना है, हम मशीन बना देंगे और मशीन से तेज से जाएगा, ठीक है हम तेज से जाएंगे, पर उस समय उसने विचार ही नहीं किया कि जब हम फ्यूल पेट्रोल या ऐसा कोई फ्यूल लेते हैं जिससे तेज जाएंगे तो उससे क्या है प्रदूषण होगा, उस प्रदूषण से लोगों को अलग अलग प्रकार से बीमारियां होगी और बीमारियों से बड़ा समस्या आ जाएगा। तो क्या है, सिर्फ एक चीज में हमने इम्प्रूवमेंट कर दिया पर उसे बाकी चीजों में जो प्रभाव हुआ उसका विचार ही नहीं किया है। तो ऐसा जो है अतत्वार्थवत अल्पम च, ये तामसिक है। फिर इसके बाद अभी भगवान ने ज्ञान के बारे में बताया, अभी ज्ञानम कर्म च कर्ता च उन्होंने बोला था, तो अभी कर्म के बारे में बताया। कर्म तीन गुणों में होता है, यत्तु कामे सुना कर्म, साहंकारेन वा पुनः क्रियते बहुला यासम, नियतम संग्रहितम राग द्वेषतः कृतम, अफल प्रेप्सुना कर्म, यत्तु सात्विकम उच्यते। तो सत्वगुण का साधन का ये लक्षण बताते हैं कि नियतम संग्रहितम, कि आसक्त नहीं रहना है, कि ये मेरा कर्तव्य है इसलिए करना है, और राग द्वेष से शुद्ध राग द्वेष मुक्त रहना है। तो ऐसा जब कार्य करता है व्यक्ति तो सात्विक है। तो राजसिक क्या है, यत्तु कामेप्सुना कर्म,
यत्तु कामेप्सुना कर्म
साहंकारेन वा पुनः क्रियते बहुलायासम, तद् राजसमुदाहृतम राजसमुदाहृतम। तो कामेप्सुना कर्म, तो काम के वाहन से कर रहा है, और क्या है उसमें, तो दो चीजें हैं, मैं करता हूं और मुझे ये फल चाहिए, ये दोनों भाव होता है उसको, क्या है वो राजसम है, कर्ता का भाव है और फल से आ सकती है, ऐसा राजसिक है। फिर इसके बारे में तामसिक के बारे में भगवान क्या होता है, इसके बारे में हमने चर्चा की है पहले, इसलिए हम उसको भी विस्तार में नहीं जा रहे हैं। अनुबंधम क्षयम हिंसा, अनपेक्ष च पौरुषम, मोहादारभ्यते कर्म, तामस मुच्यते। तो अनुबंधम क्षयम हिंसा, अनुबंधम क्या है, जो व्यक्ति समझता है कि ये जो ऐसा कार्य करता है जो बंधन में फंसा देगा। क्षय मतलब क्या होता है, विनाश, और हिंसा मतलब, क्षय मतलब जो है निर्जीव चीजों के प्रति जो हम आक्रमण करते हैं उसको क्षय कहते हैं, और फिर हिंसा मतलब जो जीवित है उनको जो हम हानि पहुंचाते हैं उसको हिंसा कहते हैं। अनपेक्ष पौरुषम, अनपेक्ष मतलब विचार ही नहीं करता है व्यक्ति कि ये मैं कार्य करूंगा उसका फल क्या होगा, पहले कार्य करता है फिर बाद में जब परिणाम आता है क्यों किया मैंने सोचकर। तो अनपेक्ष पौरुषम, फिर मोहाद आरभ्यते, व्यक्ति मोह में रहता है। जो व्यक्ति शराबी होता है, शराब पीता है, तो उसको बहुत बार अनुभव है कि शराब पीने से सेहत खराब होती है, पैसा खर्च होता है, मैं पागल से बात करता हूँ, पर फिर भी क्या होता है, तब वो मोह जब आता है तो मोहाद आरभ्यते, मोह के वश में आता है, वैसे ही कार्य कर देता है। वो तामसिक कार्य के लक्षण है ये सब लक्षण है कि व्यक्ति पूरी हर तरह से देखते हैं क्या है, अंतरंग चेतना क्या है, मोह है, और फिर बुद्धि के साथ विचार नहीं कर रहा है, और बाहर उसके प्रभाव क्या होता है, वो दूसरों का नाश करता है, चीजों का विनाश करता है। तो यह इस प्रकार का जो कर्म है यह तामसिक कर्म है, विचार नहीं कर रहा है। फिर भी तीन प्रकार के, तो कर्म का हो गया, अभी तीन प्रकार के कर्ता के बारे में भगवान बताएंगे। मुक्त संगो अनामवादी, धृत्य उत्साह समन्वित, सिद्ध सिद्धो निर्विकार, कर्ता सात्विक उच्यते। मुक्त संग अनामवादी, जब व्यक्ति मुक्त संग से मुक्त रहता है, और अहंकार से मुक्त है। यहाँ पे महत्वपूर्ण है धृत्य उत्साह समन्विता। धृत्य मतलब कि डिटर्मिनेशन, उत्साह मतलब एंथुजियाज्म, समन्विता। तो दृढ़ संकल्प और उत्साह जब होता है साथ में तो वह सात्विक कर्म है। तो आप जानते हैं कि भाग उपदेशामृत में बताया उत्साह निश्चया धैर्यात्। तो क्या है, ये तीन बताए गए हैं। तो जब उत्साह और यहाँ पे क्या है धृति, ओके, उत्साह का अर्थ क्या है कि करने के लिए शक्ति है, प्रेरणा है, उत्तेजना है। पर उत्साह धृति मतलब क्या है, क्या कई बार हमारा उत्साह रहता है पर वो कुछ समय के लिए उत्साह रहता है, उसके बाद में क्या होता है अभी नहीं आ रहा है फल, छोड़ दो उसको। पर धृति मतलब नहीं, करते रहूंगा मैं। तो उत्साह धृति जब होती है तो फिर क्या होता है, हम निपुण हो सकते हैं, हम यश प्राप्त कर सकते हैं। सिर्फ उत्साह है और धृति नहीं है तो क्या वो रजोगुण भी हो जाता है, क्या थोड़ी देर के लिए उत्साह है बाकी छोड़ दो सब कुछ। नया करने में मजा आता है पर नया करने में अभी क्या उसका नयापन चला गया तो छोड़ दो उसको। तो सिर्फ उत्साह है तो वो रजोगुण में आता है। तो पर उत्साह और धृति जब साथ में है तो वो सतोगुण में आता है। धृति और चेष्टा जब करते रहता रहते तो वो धृति के समान है, करेक्ट। तब इसके बाद में भगवान राजसिक करता बदल, रागी कर्म फल प्रेप्सु,
रागी कर्म फल प्रेप्सु,
लुब्धा हिंसात्मक लुब्धो हिंसात्मको शुचि,
लुब्धो हिंसात्मको शुचि,
हर्षशोकान्वितः कर्ता,
हर्षशोकान्वितः कर्ता,
राजस परिकीर्तितः,
राजस परिकीर्तितः।
तो रागी आसक्त है फल से, फिर कर्म फल प्रेप्सु फल के आसक्त है, लुप्त हो लोभी है, हिंसात्मको शुचि हिंसा करता है, और हर्ष शोकान्विता हर्ष और शोक से बहुत प्रभावित होता है। थोड़ा सा प्रयास किया कुछ फल नहीं मिला तो पूरा उदास हो जाता है व्यक्ति, और फल मिल गया तो क्या है 15 का समय नाचने लगता है। तो क्या ये बहुत ही मतलब क्या रजोगुण में होता है, तो व्यक्ति बाह्य चीजों से बहुत प्रभावित होता है। जो the mode of passion makes us a slave of our circumstances. रजोगुण में होता है तो परिस्थिति का हम गुलाम हो जाते, परिस्थिति अनुकूल है तो हम सुखी हो जाते, परिस्थिति प्रतिकूल हो गई तो क्या हम बड़े दुखी हो जाते। क्या है परिस्थिति एक तरह से वातावरण के समान है, अभी कभी कभी वातावरण बहुत गर्म होता है, कभी कभी बहुत ठंडी होती है, तो अभी क्या है उसको सहन करना है। क्या उस क्या कर सकते हैं, अगर थोड़ी गर्मी हो गई तो हम शायद फैन लगा सकते हैं, ठंडी हो गई तो फिर कुछ हीटर लगा सकते हैं, पर उसके बावजूद अंत में तो सहन करना है। तो उसी तरह से जैसे बुद्धिमान समझता है कि वातावरण को सहन करना है, वैसे ही बुद्धिमान व्यक्ति ये भी समझता है कि मेरे जीवन में यश और अपयश आएगा उसको भी सहन करना है मुझे। पर जिसे राजसिक व्यक्ति होता है हमेशा वातावरण के बारे में ही ऐसा है ऐसा है ऐसा ऐसे वातावरण के बारे में बात कर देता है, वैसे ही व्यक्ति क्या है जो यश और अपयश उसके बारे में बहुत उसके बारे में सोचते रहता है, उसके बारे में सोचते रहता है, हर्ष शोकान्विता करता है, ऐसा राजसिक है। तो वो भौतिक चीज के परे देख नहीं पाता है। अयुक्त प्राकृत स्तब्ध,
प्राकृत स्तब्ध,
शठो नैष्कृतिकोलस विषादी दीर्घ सूत्री च, कर्ता तामस उच्यते,
कर्ता तामस उच्यते।
तो अयुक्त, युक्त मतलब जो उचित तरह से स्थित है, उचित तरह से संबंधित है, शास्त्रों के अनुसार जब कार्य करते हैं तो हम संबंधित होते हैं। अयुक्त मतलब शास्त्रों के अनुसार कार्य नहीं, अयुक्त प्राकृत। प्रकृति क्या है, भौतिक है, तो प्राकृत मतलब जो भौतिकवादी भौतिक चीज के कुछ सोचता ही नहीं है। स्तब्ध, स्तब्ध अभी क्या है, स्तब्ध मतलब जो तमोगुण में व्यक्ति होता है न केवल वो अज्ञान में है पर वो अज्ञान में होकर सोचता है कि मैं जानता हूं। तो क्या है वह व्यक्ति स्तब्ध आत्मसंभाविता स्तब्ध 16वें अध्याय में आया था। तो एक प्रकार अज्ञान में रहना बुरा है, अज्ञान बुरा है पर अज्ञान का अज्ञान उससे भी और बुरा है। मतलब मैं अज्ञानी हूं और मुझे पता ही नहीं कि मैं अज्ञानी हूं, मैं सोचता हूं मैं ज्ञानी हूं तो वो और भी खराब है, स्तब्ध ऐसा जाता है व्यक्ति। फिर शठो नैष्कृति को बोला सा, शठो मतलब व्यक्ति क्या करता है, बेईमानी करता है। और तामोगुण में क्या होता है, जो मुझे प्राप्त करना है उसके लिए जो भी करना पड़े मैं करूंगा। तो कोई व्यक्ति अगर कोई व्यसनों का शिकार हो जाता है तो वैष्णों के पूर्ति के लिए ना झूठ बोलता है, चोरी करता है, हिंसा करता है, छठो बन जाता है, तामसिक है। निष्कृतिको मतलब प्रभुजी बोलते हैं कि जो दूसरों का अपमान करने में बड़ा दक्ष होता है। तो क्या है, तमोगुण में सत्वगुण में व्यक्ति को दूसरों के सुख में सुख मिलता है। तीन गुण है शुद्ध सत्व में, क्या है तुम्हें पर दुख दुखी है। भक्त क्या सोचता है, शुद्ध भक्त शुद्ध भक्त या महान भक्त सोचते कि तुम्हारा दुख मैं ले लूंगा, तुम्हारा दुख मैं मिटा दूंगा, और तुम दुखी हो तो मैं दुखी हो जाऊंगा और तुम्हें सुखी करके फिर मैं सुखी हो जाऊंगा। सत्वगुण में क्या है, तुम सुखी रहो मैं भी सुखी रहता हूं। कुछ लोग कहते हैं जियो और जीने दो, तो वो थोड़ा सा सत्वगुण का लक्षण है। क्या है कि तुम तुम्हारा काम संभालो मैं मेरा काम संभालता हूं, तुम सुखी रहो मैं सुखी रहो, सत्वगुण का है। रजोगुण में क्या है, ठीक है मैं आई शुड बी द बेस्ट, तो जो भी हो रहा है अगर प्रसाद मिल रहा है हाँ तुमको खाना मिलने लगे पर मुझे सबसे सबको अच्छा मिलना चाहिए। और तमोगुण में क्या है, सत्वगुण में आई विल गिव माई, शुद्ध सत्व में मेरा विभाग मैं तुमको दे दूंगा, सत्वगुण में हम सब साथ में लेते हैं, रजोगुण में मुझे सबसे अच्छा मिलना चाहिए, और तमोगुण में मुझे ही मिलना चाहिए, किसी और कुछ मिलना ही नहीं चाहिए। तो क्या है, दूसरों का अपमान करना, मतलब क्या दूसरों को मान देना ही नहीं, दूसरों को अपमान करने में जो खुद को बुद्धिमान समझता है वह नैष्कृति को, ऐसा तामसिक व्यक्ति है, अलसहा प्रभा जी बोलते हैं। अभी क्या है, ये सब गुण है, ये सब गुण एक ही व्यक्ति में हो गया ऐसे नहीं है। कोई तामसिक करता है वो नैष्कृति का होगा, कोई तामसिक करता आलसी होगा, कोई तामसिक करता होगा वो शठो होगा, पर ये सब भी है, ये सब जिनमें भी गुण है वो तामसिक है। अलसहा मतलब आलसी है, प्रभा जी बोलते हैं तात्पर्य में कि जो एक घंटे में कर सकता है सालों तक वो विलंब कर देता है, उसका करता ही नहीं। हम देखते हैं लोग मंदिर में आने के लिए, मंदिर के बाजू में घर होता है पर सालों सालों तक आते नहीं है, पर कोई क्रिकेट मैच होगी कोई और मनोज कर तो 10-10, 20-20, 50-50 मील दूर जाएंगे। कई बार होते हैं कि कोई हिल स्टेशन देखने के लिए हजारों किलोमीटर दूर जाएंगे लोग, पर मंदिर 100 मीटर दूर है घर से, वहां पे नहीं जाते कभी। क्या आलसहा और विषादी दीर्घ सूत्री च, तो जो आलसहा जो है वह साधारणतः कार्य न कर, दीर्घ सूत्री मतलब प्रोक्रेस्टिनेशन कर, हाँ करूंगा पर भविष्य में करूंगा, भविष्य में करूंगा, भविष्य में। वो क्या कहना है उसका, वो एक कहावत है हिंदी में, कल करे सो आज, आज करे सो अब, तो आगे क्या भाग क्या उसका,
पहले होगी
नहीं आज, कल करे सो आज, आज करे सो अब, फिर
अभी करे तो
नहीं, नहीं उसका क्या है? जीवन का कुछ विश्वास नहीं है तो उसका विपरीत है, आज करे सो कल, कल करे सो परसो, इतनी जल्दी भी क्या है जब जीना है परसो। तो क्या है ये बिल्कुल उचित भाव, उचित भाव है ना, दीर्घ सूत्री च, दीर्घ सूत्री च, और विलंब करते रहता है, बाद में आराम से करते हैं। और विषादी, विषादी मतलब क्या है, दुख मोह दुख करते रहते, छोटे से समस्या आ गई दुखी रहो, दुखी रहो। कुछ कुछ लोग होते हैं वो क्रॉनिकली डिप्रेस्ड रहते हैं, क्रॉनिकली डिप्रेस मतलब क्या, एक समस्या आ गई हमेशा दुखी का चेहरा देखा हमेशा गिरा होता है, मायूस रहते हैं। तो क्या है, यह जो है तमोगुण का लक्षण है। वास्तव में सत्वगुण में क्या होता है, व्यक्ति नियमितता से रहता है तो प्रसन्न रहता है, रजोगुण में प्रयास कर रहा है मुझे ये नियंत्रण करना है, वो नियंत्रण कर रहा है, तो उससे उत्तेजित रहता है, कभी हताश होता है कभी उत्तेजित होता है। पर तमोगुण में क्या होता है, व्यक्ति उसमें कुछ कर ही नहीं पा रहा, नहीं तो क्या होता है कुछ भी कर नहीं पा रहा हूं तो विषादी, हमेशा दुखी रहता है। तो ये जो है यह सब लक्षण है तामसिक कर्ता के, तो कर्ता तामस उच्यते। अभी अभी हम में से भी कुछ गुण हो गए हमें, तो क्या कर सकते हैं हम, भक्ति के तत्व ज्ञान को समझ के महामंत्र का जप करके भक्तों के संघ के द्वारा इन गुणों से मुक्त हो सकते हैं, असत्वगुण की ओर आ सकते हैं, और फिर उस तरह से हमारा हम भक्ति में भी स्थिर होकर प्रगति कर सकते हैं। अभी यह वर्णन करने के बाद अगले विभाग में भगवान तीन गुणों में बुद्धि धृति और सुख इसका वर्णन करेंगे, तो उसकी चर्चा हम कल सुबह करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीमद् भगवद गीता की, श्री प्रभुपाद की, गौर भक्तवृंद की, गौर प्रेमानंद देवी।